भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय क्रमांक 23 श्लोक क्रमांक 18। श्रुत्वा च्युतम् उपायातम् नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूर्जातसंभ्रमाः। श्रुत्वा च्युतम् उपायातम् नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तद्कथाक्षिप्तमनसो बभूर्जातसंभ्रमाः। श्रुत्वा सुनकर अच्युतम कृष्ण को उपायातम पास आया हुआ नित्यम निरंतर तद्दर्शन उनका दर्शन करने के लिए उत्सुका उत्सुक तत्कथा उनकी कथा से आक्षिप्त मुग्ध मनसः उनके मन बभूवो हो गई जात संभ्रमा उत्तेजित एवं उतावली। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध हो चले थे। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं वे अत्यंत उतावली हो उठी। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवा सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। दशम स्कंध से ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार और इस प्रसंग में हम भगवान ने जो 8 शिक्षाएं हमें प्रदान की उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पिछले सिटिंग में हमने 5वीं शिक्षा ली थी। जब प्रसंग पहुंचा था उस स्थिति पर जहां भगवान ने जो अपने ग्वाल सखाओं को भेजा इन ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने हेतु, और जब भगवान के ग्वाल सखा रिजेक्ट हुए तब भगवान ने अब उनको इन ब्राह्मणों की पत्नियों की ओर भेजा। तो 5वां लेसन इससे हम ये सीखते हैं कि भक्ति में रिजेक्शन ये एक अनिवार्य महत्वपूर्ण एक पड़ाव आता है और भगवान उसके साथ साथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो जैसे ये रिजेक्ट हुए और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या था कि अब उन पत्नियों के पास जाओ और उनसे मांगो। अब इन पत्नियों के विषय में आज का जो श्लोक हमने लिया जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुता श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुका, कि जैसे ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के विषय में सुना कि कृष्ण और बलराम निकट में हैं और वो कुछ मांग रहे हैं तो तुरंत वो उत्सुक हो गई। और आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इनकी उत्सुकता दिखाने के लिए 2 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तद्दर्शन उत्सुका और दूसरा शब्द है जात संभ्रमा। जात संभ्रमा का अनुवाद इस प्रकार से किया गया है कि जो उत्तेजित एवं उतावली हुई भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने हेतु। तो उनका उतावलापन उनकी उत्सुकता ये किस पर निर्भर थी? आज के श्लोक का जो पहला शब्द है उस पर निर्भर। श्रुत्वा, श्रवण करने के वजह से, और वो भी कैसा श्रवण? निरंतर नित्यम। तो नित्यम श्रुत्वा, नित्यम श्रवण करने के वजह से ये ब्राह्मण पत्नियां इतनी उत्सुक हो गई कृष्ण और बलराम के दर्शन करने हेतु। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि यदि हमें हमारी भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के प्रति उत्सुकता या उतावलापन जागृत करना है और इन ब्राह्मण पत्नियों के पदचिन्हों पर चलकर करना है तो क्या करना होगा? नित्यम श्रुत्वा। अब इनका जो नित्य श्रवण होता था वो किस प्रकार का होता, इसके विषय में पहले भी हमने चर्चा की है कि इनका श्रवण कोई बहुत फॉर्मल तरीके का नहीं होता था, जैसे इस्कॉन में हम लोग श्रवण करते हैं, कि हमारा जो श्रवण प्रभुपाद ने, देखिए प्रभुपाद की क्या कृपा है कि इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो ये श्रवण और कीर्तन को इतना फॉर्मलाइज कर दिया वो आज तक कहीं पर नहीं देखा जाता, कि उसके अंदर इतने डिटेल्स कि वो श्रवण कीर्तन कैसा होना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसके ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ। तो हमारा जो श्रवण हमको बहुत ही फॉर्मल तरीके से हमारे आचार्यों ने दिया है रोज, और वो भी हमारे लिए नित्यम नित्यम भागवत सेवाया। परंतु ब्राह्मण पत्नियां, उनके लिए कोई इस प्रकार का इस्कॉन का मंदिर नहीं था जहां पर वो रोज जाकर भागवत कथा सुनती, न कोई उनके पास ऐसे साधन थे। आजकल तो यदि कोई इस्कॉन मंदिर में भी न जा सके तो इतने अलग अलग साधन हैं श्रवण करने के, उनके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, उनके पास कोई MP3 प्लेयर नहीं था, तो उनका श्रवण नित्यम कैसे होता था ये प्रश्न है। आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुत्वा नित्यम, तो नित्यम श्रवण उनका कैसे हो पाता था जबकि कोई फॉर्मल फोरम नहीं था श्रवण करने के लिए। वृंदावन से जो कोई आता, चाहे वो कोई फल वाला फूल वाला या ऐसे ही कोई यात्री, जब वहां से वृंदावन से कोई आता तो एक ही चर्चा वो करते कि वृंदावन से कोई आया है तो एक ही चर्चा करेगा ना, किन की चर्चा करेंगे, वृंदावन चंद्र कृष्ण की चर्चा। जैसे कोई अगर तिरुपति बालाजी से आया तो तुरंत हम किसके विषय में पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि कितनी इडली खाई वहां। अगर कोई तिरुपति से आया है तो तुरंत हम पूछेंगे कि दर्शन कैसा था तिरुपति बालाजी का। आजकल तो सबसे पहला प्रश्न कितने टाइम में मिला दर्शन, वो पहला प्रश्न होता। तो जो भी वृंदावन से यहां मथुरा की ओर, क्योंकि ये लोग जो थे वो मथुरा के ब्राह्मण थे, तो मथुरा की ओर जाते तो भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा करते। तो इस प्रकार का नित्यम श्रवण इनका होता। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई यात्री रास्ता चलते कितनी लंबी कथा करेगा कृष्ण की, कृष्ण कथा कितनी करेगा वो, और उसके पास वो कोई ऐसे कोई बहुत ही प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हुआ करता था कि वो प्रिपेयर करके आए कृष्ण कथा, कि भगवान नोट्स निकाल के आए कि भगवान ने क्या क्या किया, पूतनावध के 8 कारण। हमको यदि भागवत सुनाना होता है तो ये सब नोट्स निकालना पड़ता है और वहां उस प्रकार से सुनाना पड़ता है। तो यहां वहां थोड़ा सा बस भगवान ने ये किया वो किया, कुछ समय के लिए चंद मिनटों के लिए उनका श्रवण होता, लेकिन उसका इंटेंसिटी देखिए, क्वालिटी देखिए उस श्रवण का। हमारा घंटों घंटों श्रवण चलता है, क्वालिटी भी उतना होना चाहिए जितना क्वांटिटी है। तो ऐसे थोड़े से रोज के श्रवण से या नित्यम श्रवण से उनके अंदर ऐसा उतावलापन, और अब तक इन्होंने दर्शन नहीं किया है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया अपने चर्म चक्षु से, केवल यहां से। तो आज का लेसन क्या सीखते हैं हम? नेवर अंडर एस्टिमेट द सिंपलेस्ट एक्ट इन भक्ति। अब ये दर्शन इनको जो मिला आज के श्लोक के अनुसार, इस दर्शन से पहले यदि हम उनका जीवन देखें तो रोज का उनका जो श्रवण एक कैजुअल एक्ट था ना, जैसे कि मान लो हम मंदिर के पास नहीं रह रहे और हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर हम मंदिर नहीं आ सकते रोज, और कोई हमको रोज मंदिर के कुछ कार्यकलाप के बारे में बता रहा है कि आज भगवान का ये ड्रेस, आज भगवान ने ये ड्रेस पहना। रोज हमने उस व्यक्ति से सुन लिया, वो पड़ोस में ही रहता है, वो रोज दर्शन करके आके हमें बताता है आज भगवान का ये ड्रेस, तो हमारे लिए तो एक रोजमर्रा की एक बात हो गई ना, एक कैजुअल बात हो गई। तो उसी प्रकार से ये ब्राह्मण पत्नियां जो रोज थोड़ा बहुत यहां वहां भगवान कृष्ण के बारे में जो सुन रही थी, वो एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कैजुअल एक्ट, भौतिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका इफेक्ट इस श्लोक में दिख रहा है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से एपरेंटली जिसको कहेंगे बहुत ही कैजुअल एक्ट था। तो एपरेंटली एक बाहरी दृष्टिकोण से एक बहुत ही साधारण सी क्रिया, लेकिन उसका इफेक्ट देखिए कि हम श्रीमद् भागवत के पन्नों में पढ़ रहे हैं, ये इफेक्ट है। ये कोई कम इफेक्ट नहीं है कि ब्राह्मण पत्नियों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और नित्य काल से रिकॉर्डेड है ये, और नित्य काल तक रिकॉर्डेड रहेगा। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने भोग खिलाया भगवान को, क्योंकि उनके अंदर जो उतावलापन, और वो उतावलापन अगर हम वो सीक्वेंस में जाएं पीछे कि उन्होंने जो भोग खिलाया वो किसके वजह से था, उतावलेपन के वजह से। उतावलापन किसके वजह से था? नित्यम श्रवण के वजह से। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भक्ति में, और न केवल भक्ति में बल्कि इस भौतिक संसार में जो हम हैं, छोटी सी छोटी चीज कितना बड़ा इफेक्ट ला सकती है हमारे जीवन में, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। जैसे ये जो कॉज एंड इफेक्ट थियरी, एक साइंस में क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट थियरी, तो कई बार इफेक्ट बहुत मेजर दिखता है लेकिन कॉज छोटा सा होगा। और ये कॉज एंड इफेक्ट थियरी, स्मॉल कॉज मेजर इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट थियरी को भगवद गीता में भगवान ने कहा है। ओरिजिनल कॉज एंड इफेक्ट थियरी भगवान के द्वारा कही गई, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो इस श्लोक में क्या है, स्वल्पम धर्मस्य, स्वल्प मात्रा में किसी ने धर्म का पालन किया, स्वल्पम भक्ति की, महतो भयात से बचा। अब हमारे मटेरियल कैलकुलेशन में ये बात फिट नहीं हो सकती, क्योंकि मटेरियल कैलकुलेशन क्या है कि जब तक आप कुछ बहुत बड़ा बृहद नहीं करते तब तक बृहद चीजों से नहीं बच सकते। तो भगवान भगवद गीता के उस श्लोक में ये कह रहे हैं कि महतो भयात, सबसे बड़ा भय से यदि किसी को बचना है तो उसको बहुत बड़ा कुछ नहीं करने की आवश्यकता, स्वल्पम भक्ति। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि एक मनुष्य के लिए इस भौतिक संसार में महतो भयात क्या है, इस मनुष्य जीवन से च्युत होकर पशु जीवन में गिर जाना, टू ग्लाइड डाउन इनटू द एनिमल स्पीशीज इज द ग्रेटेस्ट फियर और शुड बी द ग्रेटेस्ट फियर फॉर अ ह्यूमन बीइंग। और वो क्यों होगा, क्योंकि कोई भक्ति यदि नहीं करेगा तब। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था कि ये जो भगवान ने कॉज एंड इफेक्ट थियरी दिया, स्वल्पम भक्ति, स्वल्पम धर्मस्य और महतो भयात, तो इसको रिवर्स यदि हम करें, इस लॉजिक को रिवर्स करें, तो रिवर्स लॉजिक में क्या समझ में आता है, स्वल्पम भक्ति तो स्वल्पम रहने दीजिए, भक्ति हटा दो उसके बदले भुक्ति कर दो, स्वल्पम भुक्ति। भुक्ति क्या होता है, इंद्रिय भोग। तो स्वल्पम भुक्ति यदि आ जाएगा तो फिर क्या होगा, महतो भयाद रहेगा लेकिन उसमें गिरेंगे हम, बचेंगे नहीं फिर। तो जैसे स्वल्पम भक्ति से महतो भयात से बच सकते हैं, उसी प्रकार से स्वल्पम भुक्ति से महतो भयात में गिर सकते हैं। इसलिए एक बार पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, दैट डिवोटी फॉल्स डाउन हु अंडर एस्टिमेट्स टू थिंग्स, पावर ऑफ कृष्णा, underestimating power of Krishna, potential chances of a devotee to fall down, and underestimating power of Maya. ये दोनों के power को यदि हम underestimate करेंगे, potential chances of falling down. So we have to properly estimate the power of Krishna and power of Maya, both. जैसे कि गीता का वो श्लोक है 7.14 आई गेस, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो पहले दो लाइन में, इस श्लोक के पहले दो लाइन में भगवान ने पावर ऑफ माया बताया, दुरत्यया, दैवी, ये सब कुछ, गुणमयी, तो इन सब से क्या बताया, व्हाट इज द पावर ऑफ माया। और लास्ट टू लाइंस इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ हिज हिमसेल्फ, कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो इतनी दुरत्यया गुणमयी माया को वो ऐसे पार कर सकता है। तो एक श्लोक में भगवान ने पावर ऑफ माया और पावर ऑफ कृष्णा दोनों बताया, 7.14। अब यदि हम, खैर स्वल्पम भक्ति की तो चर्चा करेंगे, पहले हम स्वल्पम भुक्ति की चर्चा करते हैं। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। तो स्वल्पम भुक्ति के कुछ उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण अजामिल। अजामिल की भुक्ति देखा जाए तो जिसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इंडल्जेंस, मोमेंट था, खाली वो मोमेंटरी था, उसने जो देखा जिसने जो दृश्य को देखा वो केवल कुछ चंद सेकंड के लिए था, परंतु उसका इफेक्ट क्या रहा कि इतने बड़े भय में अजामिल गिरा कि उसका इफेक्ट ये था कि यमदूत पहुंच गए, वो जब मरणशैया पर था और उसके बीच में उसने वो जो दृश्य देखा और मरते समय यमदूत आए, इसके बीच में क्या हुआ ये हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अजामिल जो कि इतना शुद्ध ब्राह्मण, उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया होगा इस दौरान कि यमदूत को आना पड़ा। देखिए, यमदूत को बुलाने के लिए भी लोगों को अथक प्रयास करना पड़ता है, वो भी साधारण नहीं है कि ऐसे ही आ जाएंगे, लोगों को बहुत पाप करने पड़ते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? स्वल्पम भुक्ति से। अजामिल की शुरुआत हुई स्वल्पम भुक्ति से। जैसे हम हमारे गीतामृत में कुछ हफ्तों पहले डिस्कस कर रहे थे, चाहे कोई कितना भी प्रशिक्षित ड्राइवर हो, पिछले 40 साल से ड्राइविंग कर रहा हो, एक्सीडेंट के लिए क्या लगता है? वन मोमेंट ऑफ इनअटेंशन। चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अ मोमेंट ऑफ इनअटेंशन कैन किल हिम, डिस्ट्रॉय हिज ड्राइविंग एंड द ड्राइवर दोनों। तो यह अजामिल का उदाहरण। एक और उदाहरण सौबरी मुनि। और सौबरी मुनि तो ऐसे जगह पर तपस्या कर रहे थे जमुना के अंदर, ब्रजमंडल में। ये कह सकता है कि अजामिल तो कहीं ऐसे ही किसी वन में था, यहां पे सौबरी मुनि तो वृंदावन धाम में, और वो भी जमुना के अंदर तपस्या कर रहे हैं। और उन्होंने एक क्षण के लिए उन मछलियों को संभोग करते हुए देखा, मोमेंट ऑफ भुक्ति। रिजल्ट वॉज ही मैरिड 50 डॉटर्स ऑफ किंग मंधाता। तो यहां पर हम फोकस कहां पर कर रहे हैं? स्वल्पम भुक्ति और महतो भयात। और उसके बीच में हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या घड़ा होगा। छठे स्कंद में उदाहरण है इंद्र और बृहस्पति, उनके गुरु, कि इंद्र की आरती हो रही थी अमरावती इंद्रलोक में, और उनके गुरु आए। जब इनकी आरती चल रही थी तो उनके गुरु ने प्रवेश किया और देवराज इंद्र थोड़ा सा सकपका गए कि मैं उठूं उनको, उनका सत्कार करूं या मैं आरती पूरी होने दूं, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे देवराज इंद्र। कितने समय के लिए? एक सेकंड के लिए, जिसके वजह से गुरु अपराध हो गया, जो कि उनको स्पॉन्टेनियसली करना चाहिए था। उन्होंने एक सेकंड के लिए पॉज कर सोचा क्या करूं मैं। सोचिए, स्वल्पम भुक्ति, जिसके वजह से पूरे जो देवता हैं उनकी शक्तियां क्षीण हो गई क्योंकि गुरु अपराध हुआ, जिसके वजह से बलि महाराज और बाकी दैत्य उन पर अटैक कर सब कुछ लूट कर ले गए। उसकी शुरुआत कहां से हुई? मोमेंट ऑफ इनअटेंशन। तो जितना पावरफुल भक्ति है उतना ही पावरफुल माया है। तो हां, हमको जब नेहा भिक्रमनाश्वस्ति श्लोक सुनते हैं तो बहुत होप गिविंग श्लोक है, स्वल्पम धर्मस्य महतो भयाते। अरे मैं तो स्वल्पम क्या, कितना धर्म कर रहा हूं, कितने सालों से 16 माला कर रहा हूं, कितने कुंड चरणामृत पी लिए मैंने। कितना महाप्रसाद मैंने खा लिया। अरे स्वल्पम क्या, मैंने तो बृहद महतो धर्म किया है। परंतु रिवर्स लॉजिक भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि स्वल्पम भुक्ति हुई है तो वो भी महतो भयात में कन्वर्ट हो सकता है, होगा ही, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मुझे याद है एक ये एक उदाहरण है कि भौतिक प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है कई बार। मैं जब बॉम्बे में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रीचिंग करता था तो एक स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहा था उस कॉलेज में, वो आना शुरू किया प्रोग्राम्स में, और एक हाथ प्रोग्राम के बाद मैं उसको देखता था लेक्चर के समय, कोई भी ऐसा टॉपिक होता था, अपने दुखालयम अशाश्वतम टाइप टॉपिक होता था, तो उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते थे। अब नया नया कॉलेज स्टूडेंट जो कि उसकी एज शायद 19 साल कुछ होगी, और ये टॉपिक्स को सुन के लेक्चर सुनते समय उसके आंखों से आंसू आते, तो मैंने एक बार पूछा कि कुछ आप तकलीफ में हो? तब प्रोग्राम के बाद इस विद्यार्थी ने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो क्यों आया है प्रोग्राम में, हरे कृष्णा के किस कॉलेज प्रोग्राम में वो क्यों आया और क्यों वो सब भावनाएं आती हैं उसके अंदर। तो उसने अपने घर की कहानी सुनाई कि हाल ही में उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर उसकी बहन की शादी करवाई, और बहन की शादी करवाई एक आर्मी मैन से। अब हुआ क्या कि जैसे कि उनका पेशा होता है कि उनकी पोस्टिंग होती रहती है जो आर्मी में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग कहीं ऐसे गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर वहां पर हुई। तो अब क्योंकि अपने इंद्रियों पर कुछ संयम नहीं था इनका, तो ये एक बार किसी वैश्या के साथ इन्होंने संग कर लिया वहां पर, एक बार बस। शादी हो चुकी है उसके बाद, और वैश्या के साथ संग करने के पश्चात इनको हो गया एड्स, और फिर उन्होंने वो एड्स ट्रांसफर कर दिया। उनको पता नहीं उनके वो एड्स हो गया, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है कि पता नहीं लगता, महतो भयात बाद में आता है, स्वल्पम भुक्ति हो जाती है, महतो भयात बाद में आता है, तो इसको एड्स हो गया इसको पता ही नहीं। फिर इसने ये एड्स अपनी पत्नी में ट्रांसफर कर दिया। पत्नी कौन है? इस विद्यार्थी की बहन। अब ये गर्भवती हुई उस साल, तो उससे ट्रांसफर हुआ बच्चे में वो एड्स। देखिए कहां से कहां ये स्वल्पम भुक्ति का इफेक्ट्स कहां से कहां जा रहा है। तो अब हुआ ऐसा कि किसी को पता नहीं, यहां पर धीरे धीरे इसका वेट लॉस हो रहा है, ये जो कुछ 75 किलोस का था ये 40 किलोस तक हो गया, इतना वेट लॉस हो गया इसका। तो पता लगा कि भाई इसको तो एड्स है। अब आर्मी के हॉस्पिटल में ही एडमिट, और यहां इसकी जो पत्नी जो अब गर्भवती है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट, क्योंकि उसके अंदर भी वो इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अब डॉक्टर बताए कैसे कि भाई तुमको तो एड्स है ही, तुम्हारे पेट के अंदर जो शिशु है उसको भी एड्स हो गया, डॉक्टर कैसे बताए? तो अब ये स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि जब इसने देखा कि इसकी बहन हॉस्पिटल में, इसका वेट लॉस हो रहा है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो डॉक्टर को पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं तुमको साफ साफ बता दूं कि ये स्थिति है, और स्थिति ऐसी है कि अब तुम्हारे बहन की जितनी शारीरिक एनर्जी है वो बच्चा ले रहा है, तो जब तक वो बच्चा पैदा होगा या तो बच्चा बचेगा या तुम्हारी बहन बचेगी। तो तुमको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता तुम्हारी बहन को, तो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कौन चाहिए, तुम्हारी बहन या तुम्हारी बहन का बच्चा। आप कल्पना कर सकते हैं किसी भाई को एक डॉक्टर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, चॉइस तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारी बहन जीवित चाहिए या तुम्हारे बहन का बच्चा, क्योंकि किसी एक को तो मरना होगा। तो ये बोलते बोलते रो रहा था, वो बोला कि अभी मैं क्या उत्तर दूं, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बहन चाहिए तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं कि बच्चे को मारो, और अगर मैं बोलता हूं कि नहीं बच्चा चाहिए तो मैं बोल रहा हूं कि बहन को मारो। तो उसने फिर बोल दिया दिल पर पत्थर रख कर कि मैंने तो बच्चा देखा नहीं है, मैंने तो मेरी बहन देखी, तो मुझे मेरी बहन चाहिए। तो ये बता रहा था कि ऐसी स्थिति हुई कि अब वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहां के स्टाफ को पता लग गया कि भाई ये तो एड्स पेशेंट है, तो कोई अब पास में नहीं आता उसके, नर्सेस भी नहीं आती थी, जो भी कोई वो चाय नाश्ता लाने के लिए उसको भी पता लग गया बाहर वाला, वो भी नहीं आता था देने के लिए कुछ। तो ये भाई सब कुछ करता था, तो बहन को पता नहीं, वो पूछते थे ये नर्सेस क्यों नहीं कर रही है, तू क्यों कर रहा है ये सब। तो अब ये क्या बताया अपनी बहन को, तो यही रहता था हर समय जो भी देखभाल करने के लिए। और फिर एक रात की समय है जब उसको इतनी पीड़ा होने लगी, तो उसने डॉक्टर को फोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब फाइनली ये जो बच्चा है इसका अबॉर्ट करना होगा, लेकिन अबॉर्शन रेगुलर तरीके से नहीं करेंगे, कुछ तो ऐसा जहरीली चीज डालनी होगी अंदर से ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो अंदर ही मर के बाहर आए, फ्लश आउट हो। तो उन्होंने वो जो भी कुछ था वो लगा दिया जो उसको अबॉर्ट करने के लिए जो मेडिसिन, और वो चला गया डॉक्टर। और ये बता रहे थे कि रात के समय वो जब अंदर से वो बच्चा जो भी कुछ उसका अबॉर्शन हो रहा था और फिर इतनी पीड़ा इसकी बहन को हो रही थी, तो डॉक्टर को फोन कर रहा है कि इतनी पीड़ा मेरी बहन को हो रही है, आप कहां पर हैं। और डॉक्टर रात के समय दारू पीकर धुत था, तो कैसे तो वो आया और उसने फिर भाई को कहा कि भाई देखो ये जो बच्चा अभी बाहर निकला है, अलग अलग टुकड़ों में निकला था वो, भाई इसको एड्स है, मैं तो नहीं छूंगा, तेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये ऐसी ग्रूसम स्टोरी बता रहा था कि वो सब उसके उसका कौन हुआ, वो भांजा ना, भांजा या भांजी, उसके शरीर के टुकड़ों को डाल के वो कहीं रात में पहाड़ी पर जाकर गड्ढा खोदकर उसको दफना रहा है। तो ये जब बता रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई इस भौतिक संसार की ऐसी स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। तो फिर मैंने उसको बताया कि भगवद गीता हमें क्या सिखाती है भौतिक संसार के विषय में, तो उसने जप शुरू किया और उसने फिर अपनी बहन को जप करने के लिए माला दी, अपने जीजा जी को जो वो एक और एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उनको माला दी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके जीजा जी माला शुरू किए और माला शुरू करने के कुछ 6 महीने में उनका वापस से वेट 75 हो गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, एड्स के, और सभी डॉक्टर्स फिर सब जगह पर उनकी रिपोर्ट्स दे रहे हैं एड्स रिसर्च सेंटर्स में कि हमारे ट्रीटमेंट के वजह से हो रहा है। ये सच्ची घटना है। और फिर जब फिर से वो अपने हेल्थ पर आकर ड्यूटी पर चले गए, माला छोड़ दी। ये है माया का प्रभाव कि इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति भगवान को भूल सकता है। दिस इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अनग्रेटफुल। तो स्वल्पम भुक्ति के वजह से महतो भयात। और फिर रिसेंटली वो विद्यार्थी के टच में मैं आया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ फिर फाइनली, तो दोनों नहीं रहे, कि बहन और जीजा जी दोनों नहीं रहे, लेकिन उसके वजह से ये भक्ति में आ गए, ये सोलह माला शुरू कर ये भक्ति में है ये विद्यार्थी। तो स्वल्पम भुक्ति, हम जब एयरफोर्स में थे तो हमको बताया जाता था कि चाहे कितना भी बड़ा फाइटर जेट हो, एक फाइटर जेट की कीमत मिनिमम 200 करोड़ होती है। एवरेज कितना? 200 करोड़ का एक फाइटर जेट होता है। और इतने बड़े फाइटर जेट का जो क्रैश एक छोटा सा नट कर सकता है अंदर, स्वल्पम और महतो, उसको स्नैग बोलते हैं, स्नैग, अ स्मॉल स्नैग इन अ ह्यूज फाइटर जेट कैन मेक इट क्रैश। जैसे मलेरिया होता ना, मलेरिया, अब मलेरिया जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसका कॉज पूछे तो क्या कॉज है? एक ऐसा मच्छर जो कब आकर आपको काटे कहां पर पता ही नहीं चलेगा आपको। अब देखिए वो मच्छर एक साधारण एवरेज जो आदमी होता है उसकी तुलना में वो मच्छर का क्या वेट है, क्या ताकत है उसके अंदर, लेकिन इतना सा वो मच्छर और उसके अंदर भी वो जो काटता है, वो काटने की जो उसकी लिम्स है वो भी इतने छोटे से, वो दिखाई भी नहीं देते कि कब कैसे कहां काटा उसने। और वो मच्छर को भी पता नहीं होगा कि मैंने जिसको काटा है वो खत्म हो गया। अगर मच्छरों को ये पता लग जाए कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, वो मच्छर को भी पता नहीं। ये व्यक्ति, ये जो स्टूडेंट ना, ये रिसर्च भी इसी के ऊपर बाद में इसने की, एड्स के ऊपर इसने पीएचडी की, एड्स रिसर्च के ऊपर। तो ये बता रहा था कि ये जो एड्स का वायरस होता है, क्योंकि एक बार मैं जन्माष्टमी के समय उस कॉलेज में मैंने पूतना की कथा सुनाई कि पूतना को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं खेचरी, और खेचरी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, आपको पता नहीं ये इंग्लिश का वर्ड पता है क्या, शेप शिफ्टर्स। शेप शिफ्टर्स होते हैं कि जो कहीं पर भी अपना शेप बदल सकते हैं, कि वो किसी भी शेप में प्रकट हो सकते हैं, अलग अलग शेप ले सकते हैं। इसलिए पूतना ने क्या शेप लिया था? लक्ष्मी देवी का शेप लेकर आई थी वो, तो वो उसका ओरिजिनल शेप नहीं था, वो कोई भी शेप ले सकती थी, इसलिए उसका नाम था खेचरी। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में शेप शिफ्टर्स। तो ये जो एड्स का वायरस उस प्रकार से, मैं जब ये पूतना की स्टोरी सुना है तो उसके बाद में ये आके मुझे कहे कि एड्स का वायरस ऐसा ही है कि अंदर जब सिस्टम में जाता है किसी की बॉडी में तो वहां जाके बैठ जाता है चुपचाप, कुछ नहीं करेगा, कुछ समय के लिए बैठा रहेगा, और फिर अंदर के अंदर से वो आर्मी खड़े करता है, हमारे ही शरीर से एनर्जी लेके, हमारे ही शरीर से एनर्जी लेके सोल्जर्स बना के हमारे शरीर को खत्म करता है। देखिए कितना खतरनाक शत्रु है। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है और इंडियन आर्मी को लेके इंडियन आर्मी को खत्म कर रहा है, तो फिर मैंने पूछा कि ये जो मेडिसिन वगैरह होते हैं ये क्यों नहीं इफेक्ट करते इतना। तो उसने कहा कि मेडिसिन ये उसने कहा कि जैसे आप बता रहे हो ना कि पूतना एक शेप शिफ्टिंग डीमन थी, तो ये एड्स का वायरस भी वैसा ही होता है। जैसे ही सिस्टम में कोई मेडिसिन दिया, उसके अलग अलग कोड्स होते हैं वायरस के, तो अगर एक कोड उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये कोड है उस एड्स वायरस का, और उस कोड का एंटीडोट डालते हैं वो लोग सिस्टम के अंदर, तो उस वायरस को पता लग जाता है, वो अपना शेप बदल लेता है अंदर, तो वो जो मेडिसिन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे मेरे को जो मिसाइल लोड करके भेजा था टारगेट तो अलग ही है, कुछ टारगेट बदल गया, टारगेट बदल जाता है। तो इसने बताया कि दैट एड्स वायरस इज अ लिविंग डीमन इनसाइड एंड इट्स अ कॉन्शियस डीमन, इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप एंड फॉर्म्स, देयरफॉर इट टर्न्स आउट फेटल। तो स्वल्पम भुक्ति महतो भयात। अब देखिए ये जो एक हमने आज थीम लिया है कॉज एंड इफेक्ट थियरी, स्मॉल कॉज बिग इफेक्ट। एक मैं आर्टिकल पढ़ा था कुछ समय पहले कि अमेरिकन एयरलाइंस बहुत डेफिसिट चल रहा था, लॉसेस में जा रही थी, तो उनकी मीटिंग हुई कि भाई हमारी एयरलाइंस लॉस में जा रही है, एयरलाइंस को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने एक ऐसा सजेशन दिया कि सभी हंसने लगे उसके सजेशन पर, और आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे कि एयरलाइंस के लॉस को बचाने के लिए उसका सजेशन था कि हम लोग जो पैसेंजर्स को मील्स देते हैं, तो मील्स में हम सैलड देते हैं और उस सैलड में हम एक ऑलिव देते हैं, ऑलिव, तो हम वो ऑलिव निकाल दे सैलड से क्योंकि ऑलिव महंगा है। तो हर एक पैसेंजर के मील्स के ट्रे से सैलड से एक ऑलिव निकाल दो, तो सभी हंसने लगे, तो इसमें हमारा प्रॉफिट होगा। और रिकॉर्ड उन्होंने किया कि उन्होंने वो जब इंप्लीमेंट किया तो उस साल अमेरिकन एयरलाइंस ने $40,000 बचाए। ये हेडलाइंस बना था, अमेरिकन एयरलाइंस सेव्स $40,000 फॉर दैट ईयर जस्ट बाय डूइंग वन थिंग, रिमूविंग वन ऑलिव फ्रॉम द सैलड। स्मॉल कॉज बिग इफेक्ट। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गए और उन्होंने इन महात्मा से पूछा कि आप ये जो रोज साधना करते हो ध्यान में और जप करते हो, तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? मैंने भी किया, लेकिन हमको तो ये बताया जाता है कि मरते समय वो एक नाम लेना चाहिए तब जाकर तुम्हारी सदगति होगी, तो ये पूरी जिंदगी भर इतना नाम लेने की क्या जरूरत है? तो ये महात्मा इस व्यक्ति को लेकर गए बगल में एक पहाड़ी पर। वहां पर एक व्यक्ति, ये होते हैं ना जो पत्थर तोड़ते हैं, स्टोन कटर्स, तो एक व्यक्ति वो रोज वहां पर उस पहाड़ पर आकर पत्थर तोड़कर ले जाता और बेचता उसको। तो महात्मा ने दिखाया कि देखो ये जो पत्थर तोड़ता है इसको ध्यान से देखो, तो वो ध्यान से देख रहे थे, इतना बड़ा पत्थर और उसके हाथ में एक हथौड़ा, मार रहा है एक बार दो बार तीन बार चार बार। तो महात्मा ने कहा काउंट करो कितनी बार मार रहा है वो। तो उसने इतने बड़े एक पत्थर को 40 बार मारा और फिर 41 बार जब उसने मारा तो पत्थर टूटा। तो साधु महात्मा पूछते हैं कि मुझे बताओ कि पत्थर 41वें बार मारने पर टूटा, वो एक बार लास्ट मारने पर टूटा, या इसके पहले जो 40 बार उसने मारा था वो भी कारण थे? तो वो समझ गया, अ स्टोन माइट ब्रेक एट द लास्ट ब्लो बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। द नंबर ऑफ ब्लोज विच हैज गॉन टू क्रैक इट बिफोर दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। तो साधु महात्मा बोले कि हां, मरते समय वो एक नाम, वो लास्ट ब्लो होगा इस भौतिक शरीर को खत्म करने के लिए, लेकिन इस भौतिक शरीर को धीरे धीरे शुद्ध करने के लिए जो पूरे जीवन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो क्या है, हम लोग सब को ध्यान में रखना चाहिए, रोज जो हम सोला माला करते हैं वो कैसा है, वो स्टोन कटर की तरह है कि पहले ब्लो में पत्थर वैसा का वैसा दिखेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको भी पसीने आते रहेंगे, एक बार दो बार मारते रहो कुछ वो पत्थर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम देख नहीं रहे कि उसके अंदर धीरे धीरे क्रैक्स हो रहे हैं जो हमको दिख नहीं रहा होगा। फिर अचानक एक ऐसा हथौड़ा उसको लगेगा, हमको दिखेगा कि टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, और हम माला किसको पहनाएंगे, वो जो लास्ट हथौड़ा मारा हमने उसको नहीं, जो उसके पहले जितने बार हमने हथौड़ा मारा वो सब भागीदार है उसके अंदर। तो अब हमारे अनर्थों को यदि हम लें, जैसे कि हमने ये पॉइंट लिया है कि स्वल्पम भुक्ति अगेंस्ट स्वल्पम भक्ति, तो ये जो स्टोन कटिंग टेक्निक है इसी के संदर्भ में एक और है जिसको कहते हैं टर्माइट इफेक्ट। टर्माइट इफेक्ट क्या होता है कि एक मान लीजिए लकड़ी का फर्नीचर है, कोई टेबल है या कुर्सी है, तो जो दीमक होते हैं टर्माइट्स वो अंदर से बाहर से वो लकड़ी को एज इट इज रखेंगे। समझ में ही नहीं आएगा आपको कि टर्माइट ने अंदर से पूरे लकड़ी को खोखला कर दिया है, तो बाहर से एकदम वो टेबल इंटैक्ट दिखेगा लेकिन टर्माइट ने अंदर से उसको खोखला कर दिया, और आप एक उसको धक्का मारो सब कुछ नीचे गिर जाएगा। तो कई बार भक्ति में भी बाहर से हम एकदम इंटैक्ट दिखते हैं उस फर्नीचर की तरह, लेकिन हमारे अनर्थों ने अंदर से दीमक की तरह हमको खोखला कर दिया कई बार, और माया का एक झोंका वो दिखा देगा कि दीमक ने कितना खोखला किया है हमें अंदर, और छोटा सा झोंका बस, पंखा भी थोड़ा सा चालू करोगे ना वो गिर जाएगा टेबल। कई बार इतना खोखला अंदर से हम हो जाते हैं, कई बार वो टर्माइट ऐसा इफेक्ट अंदर से करता है। तो इसलिए ये बोलते हैं ना कि एक दीमक अगर लग जाए तो वो पूरे लकड़ी के फर्नीचर को खत्म कर सकता है, एक दीमक, उसके अंदर इतनी शक्ति। तो एक अनर्थ के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें अंदर से खोखला कर सकती, और उसमें सबसे बड़ा ट्रैप क्या है कि बाहर से दिखता नहीं कि ये खोखला हो रहा है। तो कई बार बाहर से हम एकदम कड़क दिखेंगे, कड़क साधक, लेकिन परमात्मा और जो निकट के हैं वही जानते हैं कि अंदर से ये खोखला होते जा रहा है। एक और सिंड्रोम है जिसे कहते हैं पंक्चर्ड टायर सिंड्रोम। पंक्चर्ड टायर क्या होता है कि आप चला रहे हो गाड़ी, कहीं छोटी सी कील वो घुस गई टायर के अंदर और उसने छोटा सा छेद किया, एकदम छोटा सा छेद किया, और धीरे धीरे से हवा निकल रही है उसमें से, तो जैसे ही वो छोटा सा छेद होता है, समझ में नहीं आता है, हम तो चला रहे हैं, और धीरे धीरे से हवा निकलती जाती, हवा निकलती जाती, और फिर ऐसी जगह पर आकर वो टायर पूरा फ्लैट होता है कि आसपास कहीं पर कोई रिपेयर शॉप नहीं, आपके पास स्टेपनी भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति की गाड़ी हम चलाते चलाते कई बार माया देवी रास्ते में यहां वहां छोटी छोटी सी कील रखती है, कील भी दिखाई नहीं देती। आपको याद है पहले वो साइकिल का पंचर ठीक कराने हम जाते थे, वो कैसे चेक करता था पंचर, पूरी हवा पहले भरेगा, फिर वो घमेले में पानी भर के उसमें डाल देगा, फिर पुर उसमें से देखेंगे बबल्स आ रहे हैं इधर। मुझे याद है एक बार मैं लेकर गया था, तो उसने, अब ये लोग भी बहुत चालाक होते हैं, तो उसने क्या किया कि एक जगह पर जहां से वो पंचर था वो दिखाया मेरे को, कर दूं, वो जितने पंचर होते उसके ऊपर पैसे लेता है वो, कि कितने होल हुए हैं। तो उसने वो करके डाल के दे दिया, तो उस टाइम तो एकदम टाइट लगा वो टायर, पूरा ट्यूब एकदम, वाह कि ऐसा है कि इसको उड़ा सकते हैं ऊपर। फिर देखा एक घंटे बाद वापस से पूरा वो फ्लैट टायर हो गया। तो मुझे समझ में आया कि केवल एक पंक्चर नहीं, बहुत सारे पंक्चर हो सकते हैं एक ट्यूब में, वो पहली बार समझ में आया मुझे। तो फिर मैंने उसको बोला पूरा चेक करो सब भर के, कहां पर वो पुर करके आता है। तो उसने फिर पूरा चेक किया, तो फिर पता लगता था कि कई बार तीन चार पंक्चर एक साथ निकलते थे एक ट्यूब के अंदर। तो वैसे ही हमारे अंदर भी भक्ति के अंदर समझ में नहीं आता कि एक है कि दो है कि तीन है, कहां कहां से हवा निकल रही है। इसलिए सत्संग में आते हैं तो सत्संग क्या है, वो घमेले की तरह है, और हम लोग वो टायर ट्यूब की तरह है, सत्संग वो घमेले की तरह है। इतना बड़ा घमेला देखो, यहां पे समझ में आता है पुर पुर कहां कहां से, कहां कहां से हवा लीक हो रही है। तो इसको कहते हैं पंक्चर्ड टायर सिंड्रोम। और ये जो है ये टर्माइट इफेक्ट और पंक्चर टायर, इसमें हम लोग कई बार हमको महसूस भी होता है कि हाँ हवा छूट रही है और अंदर से मेरा फर्नीचर खोखला हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, मैं अपने बलबूते पर जो कुछ, when we are not willing to take shelter of someone who can repair our situation, that is the most dangerous, more dangerous than termite effect and puncture type, that is called cheating propensity. जैसे एक बार एक राजा, उसने just check करने के लिए अपने प्रजा में announce किया, उसने प्रजा में अनाउंस किया कि हमारे राज्य में बच्चों के लिए दूध की कमी हो रही है, तो हम चाहेंगे कि हर हफ्ते सारी प्रजा अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आए। तो राजा ने अपने महल के बाहर इतना बड़ा एक बर्तन रख दिया और कहा कि रोज लाइन लगाकर सभी लोग इसमें एक एक, हर हफ्ते एक एक लोटा दूध डालेंगे अपने घर से लाकर। तो पहले हफ्ते जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो लाइन लगी हुई थी, सब लोटा लेके खड़े थे डालने के लिए, राजा ने बोला है आदेश है राजा का, तो सभी ने डाल दिया। और उसके बाद में फिर राजा ने प्रजा को बुलाया, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। फिर राजा ने सारे प्रजाओं को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, चलो चेक करते हैं कि कितना दूध इकट्ठा हुआ। तो जब जाकर चेक किया तो पता लगा कि पूरा इतना बड़ा जो पतीला रखा हुआ था उसके अंदर केवल पानी था। क्योंकि सबने क्या सोचा कि अरे वो तो दूध डालेगा ही, मैं पानी डालूंगा क्या फर्क पड़ेगा। सब मन में यही सोच के आए कि अरे बाकी तो दूध डालने ही वाले हैं, मैं अपना एक लोटा पानी डाल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा, किसको समझ में आएगा। तो सभी ने यही सोचा और सभी पानी लेके आए थे लोटे में। तो वैसे ही कई बार हमको लगता है कि अरे बाकी लोग भक्ति कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा यहां वहां क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो इतने प्रभुपाद के मिशन के लिए सेवा कर रहे हैं ना, बाकी तो इतना प्रचार कर रहे हैं, बाकी तो इतने सेवा में लगे हुए हैं, मैं नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है। लास्ट में पतीला दूध के बजाय केवल पानी का ही मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर अगर हम सब मिलकर यही सोचें, जो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, यदि प्रभुपाद के शिष्य यही सोचे होते तो आज ये इस्कॉन नहीं होता। क्योंकि सबने ये उत्तरदायित्व लिया कि मेरा दूध का कंट्रीब्यूशन उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितना बाकियों का। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, विषकन्या। विषकन्या का उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे कि पिछले जमाने में जो राजा हुआ करते थे वो अपने प्रतिद्वंद्वी राजा को परास्त करने के लिए वो एक विषकन्या पैदा करते थे। विषकन्या पैदा कैसे करते थे कि एक छोटी सी लड़की को बचपन से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सांप का जहर खिलाना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा खिलाओगे तो मर जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको जहर खिलाना, ताकि जब वो बड़ी हो जाती थी तो उसके अंदर इतना जहर होता था कि जब वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संग करती थी तो जहर के द्वारा उसको मार डालती थी, उसको बोलते थे विषकन्या। तो मुझे विषकन्या का कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड लगा कि वो कन्या विषकन्या कैसे बनी, एक साथ विष पीकर नहीं हुआ, बचपन से थोड़ा 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 विष पीकर। तो वैसे ही हमारे अंदर अनर्थ जो है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, एक साथ इतना बड़ा लोड नहीं आता अंदर, थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर हम भी विषकन्या बन जाते हैं कुछ साल बाद, समझ में नहीं आता कि अंदर कितना जहर है, और इतना भयंकर जहर होता है कि किसी को टच भी कर लें तो वो खत्म, और फिर हमको ही समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इतना जहर कहां से आया। उस विषकन्या को भी पता नहीं रहता कि उसके अंदर इतना जहर कैसे आया कि उसको थोड़ी मात्रा में विष पिलाया गया। जैसे साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हर समय इनकी बुद्धि बहुत तिकड़म चलती है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो मेंढक लिए उन्होंने और एक उबलता हुआ पानी, एकदम खौलता हुआ पानी में मेंढक को डाला। अब देखिए, मेंढक जैसे खौलते हुए पानी में मेंढक को डाला तो मेंढक बाहर कूद गया, और दूसरे बर्तन में मेंढक को डाला, सादा पानी था, नॉर्मल टेम्परेचर, मेंढक को डाला और नीचे से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाया, किसके, पानी का। तो धीरे धीरे उतने टेम्परेचर पर वो लेकर आया जितने टेम्परेचर पे पहला वाला पानी था जिसमें मेंढक को फेंका था, लेकिन ये मेंढक इसमें से कूदा नहीं, तैर रहा था, पानी खोल रहा है लेकिन ये तैर रहा है, लेकिन क्या, धीरे धीरे खोल रहा है वो। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट था कि जब ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज आती है तो हमको महसूस होती है, लेकिन धीरे 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 कोई चीज हमारे जीवन में आती है, इम्परसेप्टिवली वी डोंट इवन रियलाइज कि ये दूसरा मेंढक, उसके वो भी उतने टेम्परेचर पानी में रखा गया था लेकिन क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया गया था तो मेंढक को रियलाइज नहीं हुआ कि वो ऐसे खोलते हुए पानी में है। तो इसलिए कई बार हम भक्ति में सोचते हैं कि अगर कोई मेजर अटैक अजामिल जैसा मेरे को आएगा तो लगेगा कि माया का अटैक हुआ है, लेकिन कई बार माया क्या करती है, हमको नॉर्मल पानी में फेंकती है, फिर धीरे 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 टेम्परेचर नीचे से बढ़ाती है। तो इस भ्रम में मत रहो कि माया खोलता हुआ पानी हर समय सामने प्रस्तुत करेगी, नहीं, बहुत चतुर है वो। इसलिए हमको रियलाइज कर लेना चाहिए कि कहां पर वो कॉज एंड इफेक्ट थियरी हमारे ऊपर लागू हो सकती है। अब मैं रामायण के विषय में सोच रहा था कि देखिए रामायण में हम पूरी रामायण का ओवरव्यू लें तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि केवल अगर उस घटना को हम लेते तो हमको समझ में नहीं आता कि इसका इफेक्ट इतना मेजर आगे होने वाला था। जैसे कि रामचंद्र जी का वनवास, तो अगर हम ये लें कि ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट रामायण में है ना, जैसे कि किसी भी एपिक जो होता है उसके अंदर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बाकी स्टोरी थोड़ी स्ट्रेट होती है, कोई अगर नॉवल भी है तो कई स्टोरी स्ट्रेट होती है, फिर अचानक कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो अगर हम रामायण में देखें कि मेजर टर्निंग पॉइंट एक क्या था, रामचंद्र जी का वनवास, तो उसके अगर कॉजेस देखें पहले तो एकदम छोटे छोटे कॉजेस थे, इतना मेजर इफेक्ट वनवास 14 साल का, उसका इफेक्ट, उसका अगर कॉज देखें ढूंढने के जाएं तो क्या कॉज था, बहुत साल पहले दशरथ महाराज ने कैकेयी को ऐसे ही मांगो जो मांगना है, वहीं से शुरुआत हुई ना, कि महाराज दशरथ युद्ध में घायल और कैकेयी ने अपने पति की सेवा की। अब एक पत्नी अपनी पति घायल पति की सेवा कर रही है तो बहुत नॉर्मल है, और पति उसी नॉर्मल सी में अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, तो कितना कैजुअल पति पत्नी में संवाद था। वो ये रियलाइज नहीं किया था दशरथ ने कि मैं जो इतनी कैजुअली बोल रहा हूं उसका इफेक्ट आगे चलकर इतना बड़ा होने वाला है कि मेरा राम, उसको 14 साल वनवास मिलेगा मेरे एक कैजुअल स्टेटमेंट के वजह से। सो वी कैन से दैट लॉर्ड राम गॉट 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल बिकॉज ऑफ वन कैजुअल स्टेटमेंट मेड बाय दशरथ नॉट रियलाइजिंग। और अगर हम और इसको माइक्रोस्कोप लगाकर देखें रामायण को इस एपिसोड में, तो कैकेयी ने भी बहुत कैजुअली लिया था, कैकेयी ने भी ऐसा नहीं कि तुरंत बोल दिया कि चलो मेरे को 9 लाख हार लेके दो और यो मैं तो वेट ही कर रही तुम कब मेरे को कुछ वरदान दोगे। कैकेयी ने भी कहा क्या मुझे सब कुछ मिला है आपसे, कैकेयी ने भी कैजुअली छोड़ दिया था कि दशरथ ने बोला है भाई वो एक मेरे पति हैं, मुझसे प्रेम है तो उसके वजह से उन्होंने बोला, मैं क्यों इसको ना डिसएडवांटेज या अंडू एडवांटेज इसका लूं। तो कैकेयी ने भी उसको कैजुअली छोड़ दिया था, तो दोनों ने कैजुअली छोड़ दिया था, बीच में आई मंथरा। अब ये मंथरा इतना एक साधारण सी ये दासी थी कि जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ और सभी रीजन जानना चाहते ना कि अचानक कल राज्याभिषेक होने वाला है, अचानक आज वनवास हो गया, क्या कारण है, तो फिर कारण ढूंढते ढूंढते मंथरा तक कारण आया। तो सब पूछे मंथरा कौन है, कब आई अयोध्या में, किसी को पता ही नहीं है कि मंथरा थी भी, ऐसी नॉन एंटिटी थी ये मंथरा, लेकिन इसने देखिए क्या काम कर दिया। तो कैकेयी को भी नहीं पता था, कैकेयी ने ऐसे ही कैजुअली रख लिया, जैसे कई बार कोई रास्ते चलता जरूरतमंद होता है उसको घर में कोई रख लेता ना, चलो तू बाहर माली का काम करना, तो तू ये झाड़ू पोछा कर ले। तो कैकेयी ने ऐसे मंत्रा को रख लिया था। अब देखिए वो मंत्रा ने कैकेयी के मन में ऐसा विष घोला कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, रामचंद्र जी को 14 साल वनवास। अभी हम हमारे दृष्टिकोण से क्या देखेंगे, कह रहे रामचंद्र जी भगवान के अवतार और एक मंथरा के बोलने पर, कई कई छोड़ दीजिए मंथरा, एक कुबड़ी स्त्री जिसको कोई जानता तक नहीं था उसके बोलने पर वनवास लिया भगवान ने। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब छोटा सा भी कॉज क्यों ना हो उसका इफेक्ट कितना मेजर हो सकता है। संग का कैकेयी ने किसके साथ संग किया, और दशरथ महाराज ने जो कैजुअली बोल दिया कि मेरी तरफ से तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो भगवान श्री राम इस एपिसोड के द्वारा ये सिखा रहे हैं, नेवर डू एनीथिंग कैजुअली, नेवर स्पीक एनीथिंग कैजुअली, नेवर डू एनीथिंग कैजुअली, नेवर एसोसिएट विथ एनीवन कैजुअली। अच्छा ठीक है, रामचंद्र जी का वनवास हुआ, ठीक है, उसके बाद भी हमको अगर आगे का टर्निंग पॉइंट नहीं पता होता तो हमको लगता है कि भाई 14 साल अब वन में रह के वापस लौट आएंगे अयोध्या। अब यहां नासिक में क्या टर्निंग पॉइंट हुआ, ऐसी कैजुअली घूमती फिरती है सुरपणखा आई। इसने कोई प्लान करके नहीं कि अभी वहां से निकले हैं अयोध्या से चित्रकूट गए, फिर चित्रकूट से यहां दंडकारण्य, फिर यहां पे पंचवटी, तो मैं उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करके इनसे मिलती हूँ। नहीं, वो भी ऐसे ही कैजुअली घूमती फिर उसने देखा, अरे इतने सुंदर, अचानक उसके मन में कि चाहिए मुझे ये। और आप देखोगे पूरे रामायण में अगर रामचंद्र जी ने किसी के साथ जोक किया है तो एक ही, वो सुरपणखा के साथ। तो राम लक्ष्मण ने जो जोकिंगली सुरपणखा को ऐसे ऐसे घूमती फिरती फ्लर्ट कर रही मेरे साथ, चल तो घूम, ऐसे जोकिंगली सुरपणखा को जो उन्होंने ऐसे निग्लेक्ट कर दिया, वो सुरपणखा ने जाके क्या किया, रावण के अंदर सोया हुआ काम उसको जगाया जाके। अब इनको पता भी नहीं था कि ये रावण की बहन है और ये जाके क्या करने वाली। राम और लक्ष्मण तो सुरपणखा के साथ जो भी कुछ हुआ उसने, वो थोड़ा हद पार कर रही थी तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। अब सोचिए ऐसे क्षत्रिय किसी औरत के नाक कान काटने के वजह से उनको ये थोड़ी डर है कि ये आगे चलकर इतना बड़ा उपद्रव करेगी, लेकिन उसने किया, रावण को जाकर उकसाया। तो धीरे धीरे सब कुछ बॉइल हो रहा था, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है। रावण वहां से कहां, लंका, देखिए लंका और नासिक और लंका में कितना अंतर है, यहां पे इत्मीनान से रह रहे नासिक में, अच्छा क्लाइमेट भी है नासिक का, हवा पानी अच्छा है, यहां इत्मीनान से रह रहे, वहां लंका में आग जल रही है। तो देखिए टर्निंग पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, स्मॉल कॉज बिग इफेक्ट, कि सीता का अपहरण कर लेता है वो। तो हम देखे रामायण में ये जो बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स हुए, रामचंद्र जी का वनवास, सीता का अपहरण, फिर वो धोबी, ऐसे ही रामचंद्र जी अब राजा बन चुके हैं, अब लग रहा है कि अब तो सेटल हो गए, अब कई कई भी सुधर गई है, सब कुछ हो गया, अब तो फाइनली दे विल हैप्पीली लिव एवर आफ्टर होता है ना, तो वो होगा अभी। अचानक रामचंद्र जी सुबह सुबह प्रजा में निकलते हैं तो तो एक धोबी अपनी पत्नी को कह रहा है, स्टोरी हम जानते हैं। तो धोबी के वाक्य को लेकर एक और मेजर टर्निंग पॉइंट आ गया, सीता का बैनिशमेंट, एक और टर्निंग पॉइंट। तो इसके अंदर हम कॉजेस देखें, मंथरा, ये धोबी, हमको लगता है कि क्या ये तुच्छ लोगों के पीछे इतना बड़ा बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक दासी, एक धोबी और एक ऐसी घूमती फिरती कोई सूर्पणखा। लेकिन रामचंद्र जी क्या लेसन सिखा रहे हैं हमको, नेवर टेक एनी वन, एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी वर्ड कैजुअली। उसका इफेक्ट हमारे जीवन में मेजर टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं, नेवर टेक कैजुअली। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखें, अगर हम रामचंद्र जी और धोबी का उदाहरण लें कि धोबी ने कुछ ऐसी अपनी पत्नी को कहा व्यंग करते हुए, अब अगर रामचंद्र जी की जगह हम होते तो घर में घुस के दो तमाचा लगाते उसको कि तेरी हिम्मत, तू तेरी पत्नी को डांटते हुए मेरा उदाहरण दे रहा है। मैं एक तो न केवल मैं राजा यहां का, बल्कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सोचिए भगवान के पास कितना अथॉरिटी है। वो धोबी को तो उधर ही उसके पूरे खानदान को खत्म कर सकते थे भगवान, आगे कोई उस धोबी में पैदा ही नहीं होता था। उस वो पूरे धोबी को, उसके खानदान को धो डालते थे। परंतु रामचंद्र जी सिखाना चाहते थे, अगर कोई धोबी भी है वो भी कुछ बोलता है, डोंट टेक दैट कैजुअली। उन्होंने इतना सीरियस लिया कि जो सीता को इतनी मेहनत कर वो जीत के लाए वापस, और बोले कि अभी छोड़कर आओ इसको वाल्मीकि मुनि के आश्रम। तो श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि प्रभुपाद के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स कहां कहां आए। सबसे पहले प्रभुपाद की जो फर्स्ट मीटिंग उनके गुरु महाराज के साथ हुई, एक फर्स्ट टाइम अगर कोई साधु से मिलने जा रहा है तो कैजुअल एक मीटिंग है ना। और हम वो फोटो देखें, भक्ति सिद्धांत दूसरों को लेक्चर दे रहे थे, अचानक प्रभुपाद और उनके दोस्त नरेंद्र वो आते हैं, दंडवत करते हैं, और जैसे ही भक्ति सिद्धांत देखते हैं प्रभुपाद को, कहते हैं यू शुड प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। बस कितना टाइम लगा बोलने में, 30 सेकंड भी नहीं लगे। तो इतना छोटा सा स्टेटमेंट, पहली दफा मिल रहे हैं, और वो भी प्रभुपाद कौन से मूड में गए थे, नहीं जाना था उनको, जबरदस्ती लेकर गए थे उनके दोस्त। सोचिए कि हम अगर ऐसे इस्कॉन में कोई हमको जबरदस्ती लाता, हा? पहली बार कोई जबरदस्ती, अरे चलो चलो इस्कॉन, अरे नहीं जाना है मुझे, नहीं आना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती बिठा दिया है इस्कॉन के किसी प्रोग्राम में, और मान लो हम ऐसे मुंह फुला के बैठे, कहां बैठने, फंसा दिया इधर। ये सब है ना अजीबोगरीब लोगों के बीच में, तो मुंह फुला के बैठे हम लोग ऐसे, और अचानक जो प्रवक्ता है वो हमारी तरफ बोलता है यू शुड प्रीच दिस लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमको क्या लगेगा, इतनी हिम्मत तेरी, एक तो मैं एहसान करके बैठा हूं सामने, ऊपर से मेरे को आदेश दे रहा है पूरे विश्व में जाके प्रचार करो। तो सोचिए प्रभुपाद उस मूड में, और ऑलरेडी प्रभुपाद गांधी मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और पहली दफा उनके गुरु महाराज के साथ मीटिंग होती है, उनके गुरु महाराज प्रभुपाद को मुंह पे बोलते हैं यू शुड प्रीच, तो वहां से उन्होंने उसको इंस्टॉल कर लिया था अपने कॉन्शियसनेस में, प्रभुपाद के उस इंस्ट्रक्शन को इंस्टॉल कर लिया था प्रभुपाद ने। तो वो एक सुनामी शुरू हो रही थी प्रभुपाद के अंदर, इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जब उनकी पत्नी ने कैजुअली कह दिया कि मुझे तो चाय पसंद है आपसे ज्यादा, टी और मी, वो इंसिडेंट में जोकिंगली, अगेन कैजुअल स्टेटमेंट था प्रभुपाद की वाइफ का, लेकिन वो कैजुअल स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? प्रभुपाद सन्यास, प्रभुपाद सन्यास। और उसके बाद में प्रभुपाद सन्यास लेने के बाद उन्होंने जो पहला इफेक्ट हुआ था उसको फुलफिल किया। तो प्रभुपाद के जीवन के शुरुआत के ये दो मेजर टर्निंग पॉइंट्स का कॉज क्या था? जस्ट अ कैजुअल इंटरेक्शन, कैजुअल इंटरेक्शन विथ स्पिरिचुअल मास्टर, कैजुअल इंटरेक्शन विथ हिज वाइफ, जिसके वजह से आज हम यहां बैठे हैं। मेजर इफेक्ट। है कि नहीं मेजर इफेक्ट? जैसे ध्रुव महाराज, अब ध्रुव महाराज और उनकी सौतेली मां सुरुचि, उनके साथ भी क्या हुआ? छोटे से 5 साल के ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में जाके बैठना चाहते हैं, उनकी सौतेली मां बोलती कि नहीं बैठ सकता, जिसके वजह से जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्रकट करा दिया। उसकी शुरुआत कहां से हुई? ये एक छोटी सी इंटरेक्शन से। सुरुचि ने बोला कि नहीं उतर नीचे, तू नहीं बैठ सकता यहां पे। अब कितने बार घरों में ये सब होता है, छोटे बच्चों को मां डांट देती, कई बार तो बाहर भी निकाल देती, चल बाहर खड़ा रहे एक घंटा। तो कितने बच्चे हैं कि जो वृंदावन जाकर 6 महीना तपस्या कर भगवान को प्रकट कराते हैं। और वो भी ऐसा इफेक्ट हुआ कि ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की कि पूरा विश्व, पूरी सृष्टि चौकअप हो गई उनके, उन्होंने जब सांस लेना बंद कर दिया, जब ध्रुव महाराज ने अपनी सांस रोक दी तो कॉस्मिक एयर बंद हो गया, सारे देवता उनकी पार्टियों में अचानक सफोकेशन हो गया, एसी बंद सब कुछ। तो वो लोग गए भगवान के पास कि ये क्या हो रहा है, कौन सफोकेट हो रहे हम लोग, कौन कर रहा है ये। तो भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने 6 महीने में। और एक थोड़ी स्ट्रांग बात बताई गई है ध्रुव महाराज और सुरुचि के कनेक्शन में, कि जब सुरुचि ने ये छोटा सा अपराध किया था तब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, वो तो बाद में भक्त बने, पहले तो एक साधारण क्षत्रिय के पुत्र थे वो। लेकिन बाद में उन्होंने जो नारद मुनि से मिले, भक्ति की इतनी तप साधना की, तब वो भक्त बने, तब भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन जो सुरुचि ने ध्रुव महाराज भक्त बनने से पहले अपराध किया था वो वैष्णव अपराध काउंट हो गया। अब सोचिए कि वैष्णव अपराध की इंटरकेसिस कितनी पावरफुल है, दैट सुरुचि became incriminated in Vaishnava Aparad because Dhruva Maharaj became devotee later on. और अगर हम परीक्षित महाराज का उदाहरण लें कि परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा और वो श्रृंगी ने कुछ कह दिया, उसका रिजल्ट क्या? श्रीमद भागवत, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो श्रृंगी ने जो इतना कुछ कहा, और फिर लास्ट उदाहरण हम लेंगे हिरण्यकशिपु, जिसने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगे कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, बाहर नहीं, अंदर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, इतने सारे अलग अलग वरदान मांगे, तो वो कर क्या रहा था? अगर हम इसको एक भाषा में कहें, हिरण्यकशिपु वॉज एक्चुअली डिजाइनिंग नरसिम्हदेव by asking those boons, Hiranyakashipu was sculpting Narsingadev. क्योंकि Narsingadev जिस रूप में आए वो किसको ध्यान में रखते हुए आए कि Hiranyakashipu ने जितने वरदान लिए हैं कैसे मैं उन वरदानों को पूरा रखते हुए Hiranyakashipu को मार सकूं। So in one sense, who was the primary main reason for Narsingadev to appear? In that form, Hiranyakashipu. प्रहलाद महाराज ने कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की थी कि आप आधे नर आधे सिंह के रूप में आइए, नहीं। प्रहलाद महाराज तो भगवान विष्णु के ध्यान में रहते थे। ये तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे, तो हम ये बोल सकते हैं इट वॉज हिरण्यकशिपु हु पेंटेड द फर्स्ट पिक्चर ऑफ नरसिम्हदेव एंड गेव इट टू अस। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमान हिरण्यकशिपु श्रीमद् भागवत में। सो समथिंग विच हिरण्यकशिपु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट ही आस्किंग दोज बून्स विल रिजल्ट इन वन अवतार ऑफ विष्णु। सो हिरण्यकशिपु बिकम्स वन ऑफ द रीजन्स फॉर लॉर्ड टू टेक वन इनकार्नेशन इन सच अ वंडरफुल फॉर्म। कि आज तक इतने सारे नरसिंह भगवान के मंदिर हैं पूरे विश्व में, और इस्कॉन में नरसिंह भगवान की ऐसी भक्ति और ऐसे रूप में, इसके पीछे कारण है हिरण्यकशिपु का वो वरदान मांगना। तो पॉइंट यहां पर ये है, हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले संडे भी, क्योंकि ये डिस्कशन में एक मेजर थीम जिसके विषय में मैं सोच रहा था वो ये कि दीज ब्राह्मण पत्नीज दे डिडंट रियलाइज दैट देयर कैजुअल हियरिंग अबाउट कृष्णा विल रिजल्ट इन देयर सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। सो प्रभुपाद सिमिलरली गेव अस दिस साधना भक्ति in which we are not realizing that what we are getting, what is in store. Isliye jab Prabhupada ko pucha tha ek bar, are your disciples liberated? Prabhupada ne ek term use kiya tha, my disciples are unconsciously liberated. They are liberated, they don't know that they are liberated. To hamara agle Sunday ka theme rahi rahega, unconsciously liberated. How we are all in ISKCON liberated, but we are not conscious of our liberation. The only thing which you have to do is become conscious of the already liberated stage which Chaitanya Mahaprabhu and our Guru Acharyas have given us. And therefore, to do that, we have to realize, never underestimate even the simplest act in bhakti and bhukti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare. Kisi ka koi prashna?
Hare Krishna, thank you very much Bhuji. Aapne jo swalpam bhukti ke bare mein bataya, usme pehla udaharan bataya Ajamil ka, jisne कुछ क्षणों के लिए वो दृश्य देखा। दूसरा उदाहरण बताया सौभरी मुनि का, उन्होंने भी कुछ क्षणों के लिए वो दृश्य देखा। और वो आपके जो एक स्टूडेंट कौंसली थे उनका एक उदाहरण बताया कि उनके जीजा जी ने वो कुछ क्षणों के लिए अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो वैश्यासी संघ किया। अगर हम हमारे रोजाना जिंदगी में अगर देखेंगे तो हम मीडिया या फिर न्यूज़पेपर लें, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे दृश्य दिखाते हैं। हमारा इंटेंशन नहीं रहता है देखने का, लेकिन हम देख लेते हैं। इंटरनेट के ऊपर भी हमारा इंटेंशन होता नहीं है कि वो देखना है, लेकिन वो सामने आ जाता है। या टीवी के ऊपर भी जो लोग टीवी देखते हैं उनका भी इंटेंशन अभी पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो देख लेते हैं। तो हमारे लिए क्या होप्स है कि इतने सारे चीज़ों के अंदर हम है तो इससे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट भी शायद हमारे ऊपर होगा। हालांकि प्रामाणिकता से हम अभी कर रहे हैं, लेकिन अनजानतावश हमने वो चीज़ देख ली है तो इसका इफेक्ट तो होगा। क्योंकि जैसे अजामिल ने जानबूझ के तो वो दृश्य देखा नहीं था, लेकिन फिर भी एक गलत चीज़ उसके जीवन में हुई। तो हमारे लिए क्या होप्स है?
थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रभुपाद ने कहा कि एक साधक के जीवन में तकलीफें आती हैं दो कारणों के वजह से केवल। पहला कारण उन्होंने बताया इनसिंसियरिटी, और दूसरा कारण वैष्णव अपराध। अजामिल और सौबरी मुनि दोनों के क्लासिक एग्जाम्पल है। अजामिल बिकेम इनसिंसियर, इसलिए अजामिल का पतन हुआ, और सौबरी मुनि का पतन हुआ वैष्णव अपराध के कारण। ये तो निमित्त बन गए, मछलियां तो निमित्त थी, इसको भी हम दुर्लक्ष नहीं कर सकते मछलियों को भी। लेकिन सौबरी मुनि ने गरुड़ जी का अपराध किया था, भागवत में मेंशन है कि गरुड़ जी का अपराध सौबरी मुनि ने किया था, इसलिए उस वैष्णव अपराध के कारण जो उन्होंने मछलियों को, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सौबरी मुनि तो बहुत समय से जमुना में तपस्या कर रहे थे, तो पहले भी उन्होंने मछलियों को देखा होगा ना, तो पहले क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने गरुड़ जी का अपराध किया और उसके बाद में जब उन्होंने मछलियों को संग करते हुए देखा, तो ये हम नहीं कह सकते केवल वो उतने से देखने के वजह से इतने बड़े त्यागी तपस्वी अपना तप छोड़कर वो बाहर निकलकर ये सब किए, नहीं, उसके पीछे ये कारण बहुत ज्यादा समझने लायक है और समझना जरूरी है, वैष्णव अपराध। तो हमारे भी जिंदगी में जैसे आपने कहा कि मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, जो भी इसमें अनजाने में जो दृश्य देखे जाते हैं, अगर हम हमारी भक्ति में सिंसियर हैं और वैष्णव अपराध नहीं कर रहे तो भगवान बचाएंगे हमको, कुछ नहीं होगा इस सब से। दो चीज ध्यान में रखना है, सिंसियरिटी, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। लेकिन अगर हम इन दोनों में केयरफुल नहीं है तो फिर अगर हमने वो मीडिया में कुछ देखा भी नहीं है तो 50 जन्म पहले कुछ हमने देखा होगा, कुछ याद भी नहीं है हमको, हम क्या थे, वहां से माया देवी बाहर ला सकती है और उससे पतन करा सकती है। तो प्रभुपाद सोचिए, हम यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं कि एक क्षण के लिए अगर किसी ने कुछ ऐसा देख लिया, प्रभुपाद तो अमेरिका में ऐसे ऐसे जगहों पर गए कि जहां खुलेआम ये सारी चीजें हो रही थी। नेकेड हिप्पी कम्यून में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, नेकेड हिप्पीज वर सिटिंग। नारद मुनि नलकोर और मणिग्रीव को प्रीचिंग कर रहे हैं, उसी अवस्था में थे वो, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति स्ट्रांग रखी। इसलिए प्रभुपाद ने तो यहां तक, एक न्यूयॉर्क के टैक्सी में प्रभुपाद बैठे और बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने प्रभुपाद को देखा, पूछा, सो यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर अ योगी, कैन यू परफॉर्म एनी मिरेकल? प्रभुपाद ने कहा, यस, आई कैन वॉक इनटू अ रूम फुल ऑफ नेकेड वेमेन एंड नॉट गेट एजिटेटेड। उसके लिए बहुत बड़ा मिरेकल था, टैक्सी ड्राइवर के लिए न्यूयॉर्क का। तो क्यों प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंस से बोल सके, और केवल बोल नहीं, प्रभुपाद के अंदर वो क्षमता थी बिकॉज ऑफ बीइंग सिंसियर, ही हैड कॉन्फिडेंस इन कृष्णा। एंड वी गेट कॉन्फिडेंस इन कृष्णास प्रोटेक्शन as long as we are sincere, as long as we do not commit Vaishnava aparadh. The moment we are insincere, the moment we commit Vaishnava aparadh, we should realize the termite effect, the punctured tire, dheere dheere hawa nikal rahi hai, nikal rahi hai, humko realize bhi nahi hoga ki kab hamare bhakti ki steam chali gayi hai. तो ये जो आपने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया, ये क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं ये दो कारणों के। अजामिल इज द रीजन ऑफ इनसिंसियरिटी, सौबरी मुनि इज द रीजन ऑफ वैष्णव अपराध। और कोई प्रश्न?
प्रभु जी इसके साथ आपने एक एग्जाम्पल दिया था इंद्र का, जैसे वो इंद्र की पूजा चल रही थी और उनके गुरुदेव बृहस्पति पधारे, तो जो मूवमेंट है पॉज होने का उनका, उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि वैष्णव अपराध तो हुआ, लेकिन वो पॉज होने का कारण क्या है उनका?
पॉज होने का कारण यही था कि इंद्र वो ये सोच रहे थे कि भाई मेरी पूजा चल रही है, तो वो जो भोग ले रहे थे, वो जो भुक्ति, वो भुक्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने गुरु को उनका सत्कार करने के लिए उनको अपनी आरती रोकनी पड़ती थी, तो उनकी जो आरती चल रही थी वो उनकी भुक्ति चल रही थी ना, तो मेरी भुक्ति न चली जाए वो था मोमेंट ऑफ इनअटेंशन। तो वैसे ही कई बार हमारे भी साधना भक्ति में हमारे भी आरती चलती रहती है अलग अलग तरीके से, और हमारा भी वो मोमेंट ऑफ पॉज या इनअटेंशन आ जाता है। तो उनका पॉज होने का, और कोई समय पे अगर बृहस्पति आते तो हो सकता था कि वो तुरंत उनको दंडवत करते, लेकिन बृहस्पति कौन से टाइम पे आए? जब इंद्र की आरती चल रही थी उस टाइम पे आए। तो वो भी चेक करना चाहते थे, एक आचार्य ने टीका की कि बृहस्पति चेक करना चाहते थे कि ये मुझे जो गुरु मानता है इंद्र, इसका मेरे प्रति जो भाव है, सत्कार है, आदर है, उसको मैं कब चेक करना चाहूंगा? जब इसका सत्कार चल रहा होगा तब।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने जो एग्जांपल दिए, तो ये जो अजामिल, सौभरिमुनि, इंद्र, बृहस्पति, तो ये जब आप एग्जांपल दे रहे थे तो ये लोगों का पतन इसलिए हुआ कि उन्होंने इनसिंसियरिटी या कुछ वैष्णव अपराध किया, इसलिए हुआ, ऐसा आपने बताया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हमसे कुछ वैष्णव अपराध हो जाते, तो क्या हम वैष्णव के संघ में रह के जब हम अपराध करते तो धीरे धीरे वैष्णव संघ कम करने लगते, तो ये कारण है कि हमारा पतन हो जाता है, वैष्णव संघ धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ऐसा होता है तो
नहीं, कम हो जाता है या कम करते हैं?
हाँ, वही
दोनों में अंतर है।
तो कम क्यों? क्यों अहंकार बढ़ने लगता है तो फिर वो कम हो जाता है ना।
तो देखो, बाकी तो डिटेल्स है, वैष्णव संघ कम होना, एक वो मेरे को अभी एग्जैक्ट उसका कैलकुलेशन याद नहीं, कुछ जीव गोस्वामी ने कैलकुलेशन दिया है, क्या 100 वैष्णव अपराध करने से आप संघ छोड़ते हो, फिर कुछ ऐसा है कि 1000 वैष्णव अपराध, 10, 100 और 1000, ऐसा है कि 10 वैष्णव अपराध करने से आपका वैष्णव संघ छूटता है, 100 वैष्णव अपराध करने से 4 नियम तोड़ना शुरू करते हो, और 1000 वैष्णव अपराध करने से जप होना खत्म हो जाता है। तो जी गोस्वामी ने ये फिगर दिया है, 10 वैष्णव अपराध से इफेक्ट क्या होगा, 100 वैष्णव अपराध से इफेक्ट क्या होगा, 1000 वैष्णव अपराध से इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो हमारे आचार्य इतने डीप जाकर वैष्णव अपराध को एनालाइज कर जो बताएं, ये क्यों बताएं? क्योंकि ये बहुत ही सीवियर ऑब्स्टिकल है भक्ति के अंदर, वैष्णव अपराध बहुत सीवियर ऑब्स्टिकल है, इसलिए इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं हाथी मत, भक्ति लता को जो पूरा खत्म कर देता। और न केवल ये पढ़ा गया है, समझा गया, बल्कि देखा गया है इस्कॉन में, जो इसके शिकार बने हैं वैष्णव अपराध जिन्होंने किया है, धीरे धीरे भगवान से अट्रैक्शन कम, हरिनाम से अट्रैक्शन कम, वैष्णव से अट्रैक्शन कम, और बाकी सारी चीजें बढ़ती हैं फिर अनर्थ। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, मतलब जैसे एड्स की बीमारी, एड्स का वायरस, अब एड्स का वायरस शरीर के अंदर सिस्टम में चला गया, उसके बाद में जो सिम्टम्स होते हैं वो तो खाली डिटेल्स हैं मरने से पहले, है ना, उस पे उसको गौर नहीं करेंगे हम। गौर किस पे करना है? कि वो वायरस अंदर गया है वो कैसे बाहर निकले। तो वैष्णव संघ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या नाम के प्रति रुचि कम हो रही ज्यादा हो रही, ये सब बाकी डिटेल्स है, मेन है वैष्णव अपराध, वो वायरस के समान है। तो हमको अवॉइड करना है वो वायरस कैसे तो हमारे सिस्टम में न घुसे, बस एक बार घुस गया तो फिर बाकी चीजें वो करता है। महाराज ने एक लेक्चर दिया था, उसका टाइटल था साधका इज लाइक अ स्पिरिचुअल वॉरियर। और महाराज ने उसके अंदर एनालाइज किया था कि वॉर में एक जो योद्धा होता है वो जब अपने कदम भी चढ़ा लेता है तो नीचे माइंस होंगे कुछ पता नहीं उसको। तो महाराज बता रहे थे दैट व्हेन अ सोल्जर इज वॉकिंग even though the path might look very beautiful, some forest path, but he will not walk casually. He will always be fearing and checking, are there any mines? So Prabhupada also said, my only regret towards my disciples is they are not sufficiently fearful of Maya. So remaining alert means having the healthy fear of Maya, of Vaishnava aparadha, and being lax and casual. So we have to change the tendency. It's not that it's the tendency, so I'll live with this tendency. No. Then we'll become casualty. If casual tendency is taken as by default that it's never going to change, no, bhakti is so powerful. Therefore, by thinking that my casual tendency will not change or I cannot change is underestimating the power of Krishna. Taking Maya casually is underestimating the power of Maya, and thinking that my casual tendency can never be overcome is taking Krishna cheaply, is underestimating the power of Krishna. Therefore, if we are sincere, Krishna will never allow, Krishna will always keep us on red alert, like Brajavasis. Every day, new demon would come. Because they were sincere, Krishna would arrange some demon to come to increase their alertness and their attentiveness towards Krishna. So the only thing we have to do is be sincere. There is no substitute for sincerity and maturity. There is no duplicate. Krishna wants original, organic. Krishna wants organic, original sincerity and maturity. You cannot fake that, especially with Krishna. And if you do that, Krishna is there. He will make sure somehow or the other we are on our toes. हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।